ಓಮಜ್ಞಾನಸಮಿರಂಧಸ್ಥಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುವನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂಕಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ಸಂಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೇ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನೋಸುತೆ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. हम आज पढ़ रहे हैं भागवत के चौथा स्कंद 25वां अध्याय क्या 28वां अध्याय 25वां अध्याय श्लोक क्रमांक 53 52 53 निरृतेर्नाम पश्चाद्वात् तयाया ನಿರ್ವೃತಿರ್ನಾಮ ಪಶ್ಚಾತ್ವಾ ತಯಾ ಯಾತಿ ಪುರಂಜನಃ ವೈಶಸಂ ನಾಮ ವಿಷಯಂ ಲುಬ್ಧಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಃ ನಿರ್ವೃತ್ತಿರ್ನಾಮ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾ ತಯಾ ಯಾತಿ ಪುರಂಜನಃ ವೈಶಸಂ ನಾಮ ವಿಷಯಂ ಲುಬ್ಧಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಃ. ನಿರ್ವೃತ್ತಿರ್ನಾಮ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾ ಯಾತಿ ಪುರಂಜನಃ ವೈಶಸಂ ನಾಮ ವಿಷಯಂ ಲುಬ್ಧಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಃ. दुर्धकेन समन्वितः निरतेर्नाम पश्चाद्वास तया याति पुरञ्जनः वैषदं नाम विषयम् दुर्धकेन समन्वितः निरतेर्नाम पश्चाद्वास ञ्जनः शतं नाम विषयम् दुर्धकेन समन्वितः निरृत्तिः निरृत्ति नाम नामक पश्चात् पश्चिमी द्वाः द्वार तया जिससे याति जाया करता था पुरञ्जनः राजा पुरञ्जन वैशसं वैशस नाम नामक विषयं स्थान को लुब्धकेन अपने मित्र लुब्धक समन्वितः के साथ साथ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निवृत्ति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य यह संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक कान तथा आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। यह द्वार निवृत्ति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। हम लोग राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इस अध्याय से पढ़ रहे हैं और ये पुरंजन का कथा लंबी कथा है। मार्ग में प्राचीन दर्शक राजा को बताते हैं। नारद मुनि ने सोचा कि ये राजा अपने ही कर्मकांड यज्ञ इत्यादि में व्यस्तता और कुछ तत्व के बारे में सुनकर अपने हृदय में सुधार लाकर भगवत भक्ति करने के लिए वो उस समय योग्य नहीं था। वो क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने काम काज में पड़े रहते हैं। जब कोई भगवत संदेश देना चाहते हैं तो बोलते हैं कि अभी टाइम किधर है हमारे पास, बाद में देखा जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे, ऐसे अनेक लोग बोलते हैं। तो इसका भी ऐसा ही स्थिति था। तो नारद मुनि ने सोचा कि दूसरा कुछ उपाय ढूंढा जाए। जैसे कभी कभी हम कंपनी में जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते हैं, लेकिन कम से कम इतना तक उनको बता देते हैं कि स्ट्रेस आपको मानसिक तनाव से बचना हो तो आपको सबको भी नहीं होना चाहिए चीज, आपको तो क्या कहना चाहिए। जैसे अगर कोई मांस खाता है, मांस ऐसा चीज होता है कि जैसे बकरा हो, चिकन हो, गाय हो, कुछ भी खाना हो तो उसको काटते समय प्राणी भागना चाहता है उधर, कोई प्राणी कटा जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर पकड़ कर काटा जाता है तो वो प्राणी दांत दिखाता है और वापस उसको आक्रमण करने के लिए प्रयत्न करता, आक्रमण करके बचने के लिए प्रयत्न करता है। इसको अंग्रेज में फ्लाइट और फाइट मारने के लिए आप प्रयत्न करो, वो भागेगा, वो फ्लाइट है। अगर भाग नहीं पाता तो दांत दिखाकर आपको आक्रमण करेगा, वो फाइट। तो ये फाइट फ्लाइट से डॉक्टर लोग बोलते हैं इससे एक एड्रेनालाइन नाम का एक द्रव इधर से नीचे उतरता है, पैदा होता है शरीर में एड्रेनालाइन। तो वो प्राणी के शरीर में जब एड्रेनालाइन द्रव पैदा होता है, वो एड्रेनालाइन बहुत बुरा ये होता है, हार्मोन होता है, जिससे जो जो उसमें उत्पन्न होने से उसको जो भी खाते हैं उनके अंदर भी वो ही भावना आता है, फाइट फ्लाइट। इसका मतलब क्या है? फ्लाइट का मतलब है तमोगुण, फाइट का मतलब है रजोगुण। फाइट फ्लाइट का मतलब है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जो मांस को खाता है उसके अंदर भी आ जाता है। इसे इसके कारण आप देखेंगे अमेरिका में एक रिसर्च किया गया, इसमें उन्होंने देखा कि हजारों लोगों को लेकर उन्होंने उन्होंने ये रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि जब कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है इंसान को, उसमें क्रिमिनल कौन बनता है? मांस खाने वाला ही, क्योंकि उसके अंदर भी फाइट फ्लाइट का टेंडेंसी ज्यादा होता है उसके अंदर भी। लेकिन जो सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी आहार को कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष है। ऐसे गीता में एक तात्पर्य प्रभुजी बताते हैं, अगर आहार शुद्ध हो आपके विचार भी शुद्ध होगा, अगर विचार शुद्ध हो तो आपके बोलचाल भी शुद्ध होगा, अगर आपका आचार और व्यवहार ठीक हो तभी इंसान के अंदर सहिष्णुता, इंसान के अंदर नम्रता और इंसान के अंदर परजीवों के लिए एक अनुकंपा इत्यादि पैदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को भृगु मुनि ने उनके छाती पर प्रहार किया, फिर भी विष्णु ने कैसे सहनशील होकर बात किया उनके साथ। इस तरह से जो सत्वगुणी पदार्थ को खाते हैं तो सत्व विग्रह होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा में भी तुलसी का अर्पण किया जाता है, गंगा जल का अर्पण किया जाता है, सिर्फ शाकाहारी भोजन उनको अर्पण किया जाता है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर कोई शिव जी, दुर्गा देवी इत्यादि लोगों की पूजा आराधना करता है, उसमें कभी कभी बकरा, चिकन इत्यादि को अर्पण किया जाता है, ये वो तमोगुणी उपासना माना जाता है। तो इसलिए हम बता देते हैं लोगों को फाइट फ्लाइट के तौर पर, इसको सुनकर अनेक लोगों ने मांस त्याग दिया कंपनी में जब हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार दिया। तो पहले स्टेप तो क्या है, अगर मांस को छोड़ देते हैं सत्वगुणी आहार खाते हैं, उसके बाद हमको वापस बुलाया कंपनी में, बोल रहे हैं कि अभी आ जाइए वापस। एक अच्छा पॉइंट बोल दिया आपने पिछले बार, अभी आगे जाकर महामंत्र भी दे देंगे उनको अभी अगले सेशन में। इस तरह उनको धीरे धीरे लाइन में लाना होता है उनको। लेकिन अगर हम कंपनी में बोलेंगे गीता भागवत के ऊपर एक प्रवचन देते हैं तो सब भाग जाएंगे, कोई नहीं, पहले तो बुलाएंगे नहीं हमको। इसलिए उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलकर उनको धीरे धीरे सत्वगुण में लाना पहले उनको, और एकदम सांस्कृतिक बनाना उनको, धीरे धीरे भक्ति में जुड़ेंगे वो लोग। ऐसे तो नारद मुनि ने भी ऐसे ही एक योजना बनाया उनको प्रचार करने के लिए, किसको? पुरंजन को। तो उन्होंने सोचा कि पुरंजन को आया, वो बोला कि पुरंजन मैं कुछ प्रचार वगैरह करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहानी बोलना था तुमको। वो बोला अच्छा कहानी, कहानी सुनने के लिए सब तुमको अच्छा लगता है। वो बोला कि ठीक है बैठ जाए, कहानी बताइए मुझे। तो पुरंजन नाम के व्यक्ति को आने कहानी बताया उन्होंने, तो उस कहानी तो इतना लंबा कहानी बन गया भागवत में आप सुनेंगे। लेकिन किसके बारे में कहानी है? राजेंद्र ऋषि के बारे में है। तो पुरम जन, ये शरीर नाम के पूर्व में जन जो जीव रहता है उसके बारे में कहानी है। तो अलग अलग बताते जा रहे हैं नारद मुनि, जैसे ये शरीर का एक शहर है, ये शहर में पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे हैं? बाल है। और इसमें नदी बह रहे हैं, क्या है? जैसे हमारे शरीर में अंदर खून बह रहा है ऐसे। और इसमें गोपुरम है, गोपुरम क्या है? चेहरा गोपुरम है, उसमें खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ हैं, ये आंखें खिड़की है, खिड़की है ऐसे, ऐसे उनको अलग अलग चीज़ बताते हैं। तो उनको कहानी अच्छा लग रहा है, लेकिन नारद मुनि धीरे धीरे आगे जाकर उनको समझा देंगे कि जीवात्मा इस दुनिया में बंदे होकर बंधा गया है और कैसे तकलीफ उठा रहा है, वो सब समझा देंगे उनको धीरे धीरे इस कहानी के द्वारा, बुद्धिमता के द्वारा, बुद्धिमता के साथ समझाते हैं नारद मुनि ऐसे। तो उस कहानी में बीच में ये बात आता है, निवृत्ति नाम निवृत्ति नाम पश्चात द्वाह, बोल रहे हैं कि पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार है निवृत्ति कहलाता है, जो गुदा है। तो पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुग्धक के साथ वैशस नाम का ऐसे बोलते हैं। देखिए जब जीव शरीर त्यागता है तो बद्ध जीव ये निवृत्ति के द्वारा निकलते हैं, उनको जानवर की शरीर प्राप्त होता है, जैसे सुअर, तो कुत्ता, नहीं तो बिल्ली, ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा, जब मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं, मृत्यु होने वाला है, तो अपने पांव से ये गुदा को बंद करते हैं और एकदम सीधा अपने स्पाइन स्पाइनल कार्ड जो होता है, पीठ होता है, उसको सीधा रखकर आंख बंद करके किसी, अगर कोई मुख के किसी भी द्वार से निकलेगा उसको मानव शरीर प्राप्त होगा। अगर इधर से निकलेगा, नाक से निकलेगा, आंख से निकलेगा, मुख से निकलेगा, उसको कुछ लोग मरते मरते आ बोलते हुए मरते हैं, तो उनको मुंह से निकला है तो उनको मानव शरीर प्राप्त होगा उनको। अगर जो अध छिद्र होते हैं ना, नीचे के छिद्र, उधर से निकलने वाले जीवात्मा को जानवर का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए पहले वो बंद कर लेते हैं अपने नीचे के छिद्र को, नहीं तो उधर से गलती से भी ना चले जाए ऐसे आत्मा को। और ऐसे बैठ कर ऐसे इधर जो हृदय के स्थान पर आत्मा जो है अभी स्थित है इधर इस स्थान पर, और इधर जो पंचवायु होते हैं ना वो एकदम बैलेंस में है इधर, इसलिए आत्मा भी उधर है। तो वो पंचवायु को ऐसे हिला ये करके कुंडली के द्वारा ऊपर उठाते हैं, इधर तक उठाते हैं ब्रह्म रंध्र में, इधर तक लाकर कपाल को तोड़कर वो आत्मा को अपने आप को निकाल देते हैं शरीर से, और कहीं भी पहुंच सकते हैं, जैसे सिद्ध लोक में, नहीं तो वैकुंठ जाना तो वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो वैकुंठ जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको थोड़ा कंट्रोल करने की इच्छा होता है। तो सिद्ध लोक में जाकर सिद्धियों को हासिल करके इधर भूमि में आकर वापस उसको दिखाता है लोगों को ऐसे। अच्छा, सिद्ध लोग घूमते रहते हैं। लेकिन इधर मैंने वो विषय क्यों बोला आपको, तो निवृत्ति नाम के द्वार से अगर कोई जीव निकलता है वो और एक व्यक्ति को साथ में लेकर निकलता है, उसका नाम क्या है, लुब्ध हत्या। तो उसका तात्पर्य प्रभा जी बताते हैं, वो लुब्ध कौन है, वो लोभ है, लालच साथ में लेकर निकलता है। देखिए, अगर कोई मलमूत्र विसर्जन करते समय उसको, अगर मूत्र विसर्जन करते समय जलता है, अगर मल विसर्जन करते समय भी उसको दर्द होता है, जलन होता है, उसका मतलब उसने ऐसा आइटम खाया है उसने। कुछ लोग गर्म आलू खाते हैं, खाते समय गर्म भी है तीखा भी है, वो ऐसे खाते हैं, खाते समय आंखों से आंसू निकलता है, फिर भी उसको खाने के लिए मन करता है उनको, खाते समय भी जलता है, निकलते समय भी जलता है, ऐसे वो बताते हैं, क्योंकि वो लालच होकर खाए हैं ऐसे बताते हैं। तो उनको अगर बोलो कि अरे ऐसे तीखा चीज मत खाओ, तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, खाओ मत, अगर आप बोलेंगे, लोग बोलते हैं अरे क्रोध उत्पन्न होने से क्या गलत है, आजकल क्रोध करना पड़ता है नहीं तो काम नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि इससे क्या समझे, इसलिए हमने फाइट फ्लाइट समझा कर उनको बताया, तभी वो लोग समझ गए। जैसे हम जब छोटे लड़के थे, एक बार मैं और मेरे सब मित्र खेल रहे थे, कुछ एक बहुत बड़ा सुअर, एकदम लंबा, इतना लंबा मोटा, वो सुअर हमारे कंपाउंड के अंदर आ गया, उसके साथ एक दर्जन छोटे छोटे सुअर भी थे, सब अंदर आ गए, हमको उसको बाहर भगाना था, लेकिन हमने लाठी दिखाया, बाहर जाने के बदले वो कामपुर के अंदर चले भाग गए। तो हम सब लोग लाठी लेकर उसके पीछे पीछे भागते रहे, वो डर गया, वो भागता रहा भागता रहा, तो कंपाउंड के अंतिम स्थान तक चला गया, उधर डेड एंड था, उधर अभी जा नहीं पाया आगे, क्या करेगा वो, तो तुरंत वो यू टर्न लेकर मुड़कर हमको धान दिखाया, हमको उसको देखकर हम लोग डर गए, हम भागने लगे अभी, तो हमारे पीछे पड़ा वो, तो हम भागते भागते हम सब अपने अपने घर में घुस गए। तो पहले जो गया वो क्या है, फ्लाइट, बाद में क्या किया वो, तो जानवर के अंदर प्रवृत्ति होता है, अगर हम लोग मांस चाहेंगे तो वो भी प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगा, तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति। लेकिन शाकाहारी भोजन भगवान को बहुत सारा करके पाते हैं, इसमें आहार शुद्ध हो, सबको शुद्ध हो, ध्रुवास्मृति, हमारे स्मृति एकदम गहरा बन जाता है प्रसाद पाने से। और स्मृति लंबे ग्रंथि नाम प्रमोक्ष है, बोलते हैं कि सब तरह के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं प्रसाद पाकर, ऐसे बताते हैं। तो हम प्रसाद के बारे में उनको अभी तक बोला नहीं कंपनी में, लेकिन कम से कम ये बोल दिया फाइट फ्लैग के बारे में, तो समझ गए वो लोग। अनेक लोग बोले कि आज से हम मांस तोड़ देंगे, ऐसे अनेक लोग आकर शपथ ले आए। तो हम जिस तरह उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया, ऐसे ही नारद मुनि इनको एक कहानी के द्वारा समझा रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ जाएगा ये कौन प्राचीन परिषद। लेकिन हमारे लिए आज के दिन इस तात्पर्य से सीखने लायक सबक क्या है, लालच नहीं तो लोभ जो है वो जीव के लिए अच्छा नहीं है। इस दुनिया में हम सबके लिए कुछ मांग गए होते हैं, जैसे हमको थोड़ा बहुत नींद चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, थोड़ा रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। सब जीव के लिए भगवान परम पिता ने सब कुछ व्यवस्था की है। ऐसे भगवान ने सृष्टि किया कि सृष्टि में कुछ कमी नहीं है। आप देखेंगे जंगल में पंछियां जब सुबह उठकर 1 किलोमीटर उनको उड़ना पड़ता है, बस पेड़ों में इतने फल उनको खाने के लिए प्राप्त होते हैं, भरपूर प्राप्त हो जाते हैं उनको। आप जंगल में जाकर देखेंगे इतने फल नीचे गिरे पड़े रहते हैं जमीन में, इसमें से पंछियां थोड़ा ही फल लेते हैं, बाकी फल तो पड़े रहते हैं। तो भगवान के सृष्टि में कुछ कमी नहीं है जीवों के लिए। भगवान परम पिता हैं, सबके पिता हैं, उन्होंने आयोजन किया है। लेकिन इस दुनिया को सृष्टि करते समय भगवान ने एक योजना मन में रखते हुए सृष्टि किया है। वो योजना जानवर नहीं तो जलचर नहीं तो जो पंछियां हैं वो समझ नहीं पाएंगे, मनुष्य समझ सकता है। तो मैं उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। इधर लोभ बताया जा रहा है कान के संबंध में, लेकिन हम लोभ के संबंध में कुछ जनरल चीज बताएंगे, उसके बाद हम कान के बारे में बताएंगे ना? तो प्रभुपाद जी उनके किताब है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस करके किताब है, उसमें एक परम रहस्य को पर्दाफाश करते हैं सबके लिए। आप पढ़ सकते हैं उस किताब में, मैंने उसमें से 10 पॉइंट निकाला है, पढ़कर पॉइंट नोट कर लिया है। इतना बढ़िया प्रभुपाद जी बताते हैं। सर्वप्रथम वो बोलते हैं प्रभुपाद जी ये लक्ष्मी नारायण जो है इसमें नारायण का नाम कैसे आया, नारायण इससे नारायण बना। सब नरों को अपने नाभि स्थल में आश्रय देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, और जब उनके नाभि स्थल से एक कमल उगता है उस कमल में कोटान कोटि चमकने वाले छोटे छोटे जैसे जुगनू होता है ना ऐसे चमकने वाले जीव होते हैं उस कमल में, और उनमें से नारायण एक जीव को चुनते हैं जो सबसे उनके अंदर योग्यता ज्यादा योग्य जीव है। नाम क्या है उसका, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को आकार देकर उनका चतुर्मुख है, उनको आकार देकर उनके बेटे को पैदा करते हैं भगवान, और उनको एक उपदेश देते हैं उनको इस तरह से तुम तपस्या करो, तपस्या करके ब्रह्मा जी के साक्षात्कार प्राप्त हुई। वो हमारे गुरु परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य। उसके बाद सब जीवों को अकोमोडेशन के लिए भगवान ने क्या किया, तुम 14 भुवन को सृष्टि करना, तो विराट पुरुष के रूप में अपने आप को विस्तरित करके भगवान ने 14 भुवन के आयोजन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को बोला उन्होंने, तुम हर एक जीव जो है उसको अलग अलग शरीर प्रदान करो, तमोगुणी जीवों को नरक में भेजो, रजोगुणी है उनको भूमि में, सत्वगुणी है उनको देवलोकों में ऊपर, इनके लिए अलग अलग अकोमोडेशन के आयोजन करो, उधर वो लोग जाकर रहे। और उनको खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए भगवान ने दुर्गा देवी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अपने दो विराट पुरुष की आंख होते हैं ना, एक गर्म आंख है एक ठंडा आंख है, क्या हो सूर्य और चंद्र, उसके द्वारा प्रकृति की ओर अपने दर्शन को अपने दृष्टि को डालकर भगवान प्रकृति में सब पैदा करते हैं, धान्य है अन्न है मसाला है फूल है फल है सब कुछ इत्यादि को पैदा करते हैं बारिश के द्वारा, सूर्य के द्वारा ही बारिश होता है ना, सूर्य के द्वारा बादल होता है, बादल से बारिश होता है, बारिश होने से प्रकृति में हरियाली छा जाती है, इसलिए माया अध्यक्षेण प्रकृति ऐसे बोलते हैं। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सब तैयार करती है, भगवान की भगवान ही बोलते हैं प्रकृति को, मेरे बच्चों के लिए कुछ तैयार करके दो वो खाकर तंदुरुस्त रहे ऐसे। तो कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी के घर में कुछ मेहमान आ गए तो उनको देखते ही पुरुष क्या करेगा, किचन की ओर मुड़कर अपने पत्नी को देखेगा तो इंकित करेगा, उसके इंकित बोलते हैं उसको इशारा करता है, उस इशारा को देखकर पत्नी तुरंत समझ जाती है कोई गेस्ट आए, वो अंदर से देखते कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है 4 लोगों के लिए कुछ टिफिन बनाकर लाती है, सबको परोस देती है। ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। इसी तरह भगवान पुरुष हैं और दुर्गा प्रकृति है, तो भगवान जब प्रकृति की ओर मुड़कर बोलते हैं कि मेरे इतने बच्चे आए हैं इस दुनिया में उनके लिए कुछ तैयार करके दे दो, तुरंत तैयार करके दे देती है वो सबको, इसलिए हमें प्रकृति के द्वारा सब कुछ प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि अगर हम लोग अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे अच्छा जिएंगे लेकिन अट्टे कट्टे शरीर प्राप्त करके हम लोग भगवान को बोल जाएंगे, उस समय क्या होता है आगे हम देखेंगे, वो प्रभा जी बताते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो होते हैं वो शक्ति और शक्तिमान है। तो लक्ष्मी सब शक्ति, हम भी शक्ति हैं, लक्ष्मी भी शक्ति है, लेकिन फर्क क्या है, लक्ष्मी के हृदय में समुद्र के बराबर एक, इसको महाभाव बोलते हैं, महाभाव का मतलब महा प्रेम का बहुत बड़ा समुद्र है उनके हृदय में। इसलिए लक्ष्मी जैसे कोई सेवा नहीं कर सकते नारायण के लिए, तो नारायण की अर्धांगिनी है वो लक्ष्मी, है वो जगन माता है वो। लेकिन भगवान ने जगन माता को क्यों भेजा है, ताकि उनसे हम सीख कर भगवान की सेवा में हम लगे, सब जीवों को वही सिखाते हैं, वो खुद ही पाद संपादन करती है भगवान की अनंत शेष में बैठ कर, लेकिन तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी इस दुनिया में कैसे किस रूप में आती है, चंचला नाम के रूप से आती है। इस दुनिया में लक्ष्मी के ही सब चीज विस्तरित रूप है, जैसे सोना है, जैसे चांदी है, और किसी के भी पॉकेट में लक्ष्मी हो, कोई कोई लाखपति हो, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, सबका पैसा किधर से आता है, किधर से आता है, लक्ष्मी से आता है। लेकिन भगवान लक्ष्मी को दिया, मतलब क्या है, इस सारे दुनिया के पैसा और साक्षात उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी, वो सब भगवान की संपत्ति है। तो लक्ष्मी क्यों लक्ष्मी देती है लोगों को, वो देखने लायक चीज है, सबके पॉकेट में क्यों लक्ष्मी दिया है उन्होंने। तो लक्ष्मी जीवों को बोलती है कि देखो मैं खुद लगती हूँ भगवान की सेवा में, तुम लोग भी, तुमको भी लक्ष्मी दिया है उसको लेकर तुम भगवान की सेवा में तुम भी लगाओ, हम सब जुड़कर ये जो परम पुरुष जो है उनकी सेवा करेंगे। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को सब प्रजा कर देती है, ठीक है नहीं, कर देना पड़ता है कि नहीं, कर देना पड़ता है, कर वसूल किया जाता है, लेकिन वो कर वसूल करके क्या करते हैं प्रधानमंत्री, प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, है ना। इस घर में देखिए पिताजी हैं, उनकी बात मानना होता है बेटा बेटी को, ठीक है नहीं, जब बेटा बेटी ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, उनको या तो डांटते हैं, जैसे एक लड़का था इधर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में, वो किसान था, उनके पिताजी पैसा भेजते थे महीने में 10,000 भेजते थे उसको, लेकिन पैसा लेकर उसने शराब किया, सिगरेटों का स्त्रियों के साथ घूमने लगा इधर उधर, तो पिताजी देखा एक साल दो साल पढ़ाई नहीं कर रहा बेटा ठीक तरह से, उसको उसका गला पकड़ कर वापस लेके गए गाँव में, बोला कि अभी खेत जो तो अभी है तुम इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लायक नहीं हो। तो अगर पिताजी की बात मानकर बेटा चलता है तो बेटा की कल्याण है, पिताजी की बात नहीं मानेगा तो उसको दंड है उसको। इस तरह आप देखेंगे कि परिवार में भी एक लीडर होता है, एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, इस तरह सारे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं जो वेद पुराण इत्यादि को परंपरागत आंसर देते हैं। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के लिए एक नायक है, कौन, वो परम सत्य भगवान, जैसे विष्णु के शरीर से सब ब्रह्मांड निकलते हैं, सृष्टि करता है, वो सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, तो उनकी अनुयायी हम नहीं बनेंगे, उन्होंने कुछ योजना बनाकर दिया है जीवों को। कोई पूरे पूछेगा कह रहे लक्ष्मी की सेवा करके हम लोग भी सेवा करें, हम साल सेवा क्यों करें, हम खुद भोगेंगे, इस तरह जीव सोचता है। तो जब जीव का इस तरह का भावना होता है, भगवान को नकार देता है जीव, उस समय जीव के अंदर इच्छा होता है कि मेरे पास जो भगवान ने दिया ये भरपूर नहीं है, हमको और चाहिए। वो जीव क्या करता है, लोभी बनकर बाकी जीवों के पास जो भी है धन संपत्ति इत्यादि उसको भी लूटता है। आप देख सकते हैं कभी कभी घर में 3-4 बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे को एक एक खिलौना देते हैं, पिता सोचते हैं कि एक छोटे बच्चे को एक बलून दे दो, उसको एक टेडी बेयर दे दो, थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको ट्राइसाइकिल दे दो, देते हैं कि नहीं माता पिता, खरीद कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो सब बच्चों के खिलौनों को अपने पास ले लेते हैं और सब बच्चों को मारते हैं, वो है निकल जाओ सब हम भोगेंगे। तो बचपन में जो बच्चे करते हैं, बचपना करते हैं, इसे यही चीज करता है इंसान बड़े होने के बाद भी। बड़े होने के बाद अलेक्जेंडर ने क्या किया, सब देश के सब देशों को हड़प लिया अपने पास। बच्चे जो करते हैं वही बड़े होने के बाद करता है इंसान। जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में सारे दुनिया को अपने पास ले लेना चाहते थे, आजकल देखिए ब्रिटेन कितना छोटा है, उन दिनों में सारे दुनिया में घूम घूम कर पूरा हड़पने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने। तो आप इस तरह देखेंगे जीव के अंदर लोभ भावना जब आ जाता है, ये बताया जाता है कि लोभ पाप का पाप है, इसलिए वो पाप को पैदा करता है। पाप का मतलब क्या है, भगवान के विधि विधानों को नकारना, तोड़ना, ये पाप है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान के अंदर ऐसी इच्छा हो जाता है कि
भौर में पैसा इकट्ठा करो, भौर बड़ा घर बांधो, भौर मेरे पास 20-20 गाड़ी ले दो। कुछ कुछ घर में जाकर देखिए, चार चार पांच पांच टेलीविजन होते हैं, पिताजी के लिए एक, माता जी के लिए एक, बेटा के लिए एक, बेटी के लिए एक, उसका टीवी अलग अलग टीवी होता है, हरे के लिए तो हरे के पास दो दो कार है। तो आजकल दिल्ली में बंगलोर में एक नियम बनाया उन्होंने, अगर पिताजी और बेटे दोनों के पास कार है, दोनों एक ही दिन चला नहीं सकते। मालूम है आपको? मालूम नहीं आपको? मालूम नहीं? उन्होंने नियम बनाया है कि ऑड नंबर के लोग मंडे वेनसडे फ्राइडे ऐसे चला सकते हैं, इवन नंबर के लोग ट्यूसडे थर्सडे ऐसे चला सकते हैं गाड़ी। इसका मतलब क्या है? कार होने के बावजूद भी आप यूज नहीं कर पाओगे आप। क्यों ये बना है? क्योंकि एक ही घर में लोग पांच पांच दस दस गाड़ी खरीद रहे हैं आजकल, इसलिए कुछ नियम बनाया है इसे। नया नियम निकला, पुणे में पता नहीं आ गया कि नहीं, लेकिन आ गया क्या? पुणे में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है बहुत गाड़ी का। लेकिन बोलने का मतलब क्या है? लोगों के अंदर इतना लोभ भावना होता है कि पैसा भी कितना, आप किसी को पूछिए कंपनी में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो कंपनी वाले पूछते हैं, बताओ तुमको कितना सैलरी चाहिए, क्या बोलेगा वो? जितना ज्यादा हो सकता है उतना दीजिए, बोले क्या कि नहीं? करेक्ट है ना? कोई लिमिट बताएगा? कोई किसी को पैसे की लिमिट ही नहीं है। तो प्रभु बताते हैं कि इस तरह से जीव क्या करता है, तो पैसा इकट्ठा करता है, बढ़ा कर मानता है। इस तरह करते समय क्या होता है? आशा अपाश सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा ही हंसे काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, अन्यायेन अर्थ संचयन, न्याय मार्ग से पैसा इकट्ठा नहीं करता, अन्याय मार्ग से इकट्ठा करता। और अन्याय मार्ग क्या क्या है? असौहतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो गमहं भोगी सिद्धोहं बलवान सुखी। ये बताता है कि असौहतमया शत्रु, मेरे बिजनेस धंधा जो कर रहा हूँ, अगर कोई होटल का धंधा कर रहा है, दूसरा होटल आता है तो उसकी ईर्ष्या करता है। अगर कोई टेक्सटाइल दुकान खोलता है, दूसरा कोई टेक्सटाइल दुकान खोलता है उसी शहर में तो चलता है। अगर कोई ट्यूशन सेंटर खोलता है, कोई आउट ट्यूशन सेंटर खोलता है तो उससे चलता है। असौहतमया शत्रु, अरे वो भी यही धंधा काम चालू किया है, अगर लोग हमारे होटल में नहीं आते, उधर आते तो मेरा क्या होगा? तो उसको शूटिंग कर देता है, हनिष्ये चापरानपि, उसको उसका टांग खींच देगा। इस तरह दूसरे लोगों का टांग खींच कर खुद पैसा ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, खुद आगे अग्रसर होना चाहता है। इस तरह करते समय जीवों के बीच में एक दूसरे के साथ बड़ा लड़ाई हो जाता है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में। कभी कभी परिवार में भी देखा जाता है, अगर तीन चार बेटे बेटियां हैं तो छोटे बच्चे होते समय एक मिलजुल कर अच्छा खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद सबका शादी हो जाता है, कोई कभी कभी सोचती है, एक बहन सोचते कह रही मैं, मुझे बेटी हुई है उसको बेटा हुआ है, वो सोचते हैं दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरा बार ट्राई करते हैं, दूसरा बार भी बेटी होती है उनको, दूसरा बार भी बेटा होता है, और ज्यादा जलन बढ़ जाता है। अरे क्या उनको दो बेटे, हमको दो बेटी, ऐसे कभी सोचते हैं। इस तरह की स्पर्धा हो जाता है, देखा जाता है दुनिया में। और भगवान के आयोजन हर एक व्यक्ति के लिए उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो होना है वही होता है, लेकिन जीव सोचते हैं कि मैं नियंत्रण करता हूँ, हमको हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए। कभी कभी भाई भाई में बेच होता है, कभी कोई भाई उतना अकल ज्यादा नहीं होता उसका, दूसरा भाई बड़ा बुद्धिमान है तो एक बहुत बड़ा कमा लेता है, एक भाई थोड़ा कम कमाता है, लेकिन उनकी दोनों की बीवियाँ शांत नहीं रहते हैं। ये बीवी बोलते देखो तुम्हारा बड़ा भाई देखो वो क्या कमाता, तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम बुद्धू हो, ऐसे उसके साथ कुछ नहीं है वो। इसके कारण उनके परिवार के अंदर क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। हर एक को समझना चाहिए कि हमारे जो हमारी खूबसूरती, हमारे धन दौलत, हमारे ऐश्वर्य, हमारे तबीयत, हमारे शरीर का जो चमड़ा का क्या गोरा है काला है, ये सब की प्रारब्ध कर्म के अनुसार आयोजन किया गया है ये सब की। तो हर एक व्यक्ति क्या सोचना चाहिए, ये शरीर तो मर मिटने वाली पदार्थ है, एक एक ना एक दिन निकल जाएगा शरीर, बचपन से युवक अवस्था से बुढ़ापा निकल जाएगा, ये शरीर मृत पदार्थ है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, और हमारा संबंध भगवान के साथ शाश्वत है। तो लक्ष्मी जी कह रही है कैसी सेवा करना है, तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। हम धनी हो गरीब हो, हम गोरे हो काले हो, हम पढ़े लिखे हो अंगूठा छाप हो, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी हो, हम भगवान की सेवा करने के लिए सबके पास भगवान ने शक्ति भी दिया है और किसी में कमी नहीं देखते हैं भगवान। अगर आपको भगवान की सेवा करते करते आपके आपको लगता है कि हम गरीब हैं, हम कैसे सेवा करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके अंदर भगवान कुछ कमी देखेंगे। देखिए भगवान की भक्ति करते समय अगर हम पराजित भी हो जाते हैं, भगवान उस भक्ति को भी स्वीकारते हैं। जैसे आप लोग जानते हो जटायु रावण के साथ युद्ध करते करते उसके रावण ने उसके पंखा को काट दिया, नीचे गिर गया वो, उसकी मृत अवस्था में रामचंद्र जी ने उनको मिला, तो रामचंद्र जी ने आंसू बहाया जटायु को देखकर, बोला कि जटायु मेरे सीता को बचाने के लिए तुमने जान भी दे दिया, तुमने मैं अभी इसी आज आज के दिन शाम के समय तुमको वैकुंठ धाम दे दूंगा, वैकुंठ प्राप्त हो जाए आज के ही दिन। तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण जीत गया, जटायु हार गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए वो जटायु वैकुंठ गया और रावण मारा गया, है ना। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि भक्ति मार्ग में हम जो भी करते हैं भगवान के, थोड़ा हो सेवा बड़ा हो, भगवान इसको स्वीकारते हैं। तो इसलिए इंसान को भक्ति में जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या करता है इंसान, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है। इकट्ठा करके क्या करना चाहता है, सारे उसको लगता है कि मैं बड़ा हूँ करके अंदर ही अंदर सोचना चाहता है, मैं बड़ा हूँ करके लोगों को दिखाना चाहता है, दोनों चाहता है। हमको ये भी इच्छा होता है कि हम बड़े हैं ऐसे सोचना भी इच्छा है और दुनिया को दिखाना भी। जैसे मैं पुणे स्टेशन में देखा एक व्यक्ति बैठा था उधर स्टेशन के पास, वो अपने आप को देख रहा है, वो सेल्फी में देख रहा है, उसमें वो बंदर जैसे दिख रहा है वो, लेकिन ये कूलिंग ग्लास पहना वो ऐसे कूलिंग ग्लास पहन कर ऐसे दिख रहा है। सब लोग बोल रहे अरे हट जाओ, हमको स्टेशन के अंदर जाना, बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हो। ऐसे हर एक इंसान इतना देहात्म बुद्धि बढ़ गया है ये सेल्फी आने के बाद, लोग ऐसे बड़ा स्टिक होता था पहले, अभी आजकल मना कर दिया गया मालूम है आपको, स्टिक लेकर ऐसे स्मार्टफोन कर रखकर लोग खींचते थे ना पहले, उस स्टिक के कारण अनेक लोगों को चोट पहुंचा उसके कारण। तो देखिए ये लोगों के इतना अध्यात्म बुद्धि, ये जीव सोचता है कि मैं ही दुनिया का केंद्र बिंदु, सिर्फ ये कूलिंग ग्लास पाने से क्या खूबसूरती बढ़ जाता है क्या, लोग सोचेंगे तुम अंधे हो इसलिए कूलिंग ग्लास पाने। तो ये जीव अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर सोचता है, अभी मेरे पास अभी अभी गांव में लोग कभी कभी मोटर बाइक से डुब 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 जाते हैं, सब लोग बोले भाई बोलो मोटर बाइक कर दिया बड़ा है। तो लोग सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर बड़ा हुआ दिखाना चाहता है, कोई दिखाएगा कि हमारे पास गाड़ी आ गया गाँव में, कार लेके आए गाँव, अरे गाँव में कार लेके आकर तुमने पोल्यूशन बढ़ा दिया, क्या अच्छा किया तुमने, वो पोल्यूशन से पता चलता है तुम कितना गर्वी हो। तो आप देखेंगे इस तरह इंसान दिखाना चाहता है लोगों को मेरे पास क्या कितना। आप देखेंगे गांव में कोई बहुत बड़ा मकान बनाता है आजकल, देखा आपने, वो लोग गल्फ में जाकर अमेरिका में जाकर पैसा कमा कर लेके आकर बड़ा एकदम कलरफुल बिल्डिंग बनाते हैं, तो गाँव में सब लोग झोपड़े में रहते हैं, लेकिन लोग दिखाना चाहते हैं देखो हमारे घर देखो हम राजा है सारे गाँव के। देखेंगे इस तरह हर एक इंसान अपने अपने शक्ति को प्रकट करके दुनिया के लोगों को दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े हैं, पैसा का बल कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, हम कितने खूबसूरत हैं, हम कैसे ऐशारा में जीते हैं, सब लोग देखो मुझे देखो मेरे खूबसूरती देखो, इस तरह दिखाना चाहता है। ये जीव क्या करना चाहता है, इस तरह दिखा कर सारे दुनिया को घोषणा करता है जीव की हम ही केंद्र बिंदु है, सब लोग हमको सलाम मारना चाहिए, ये इच्छा करता है जीव। इस तरह से जब जीव के अंदर इच्छा हो जाता है लोभ भावना एकदम बढ़ जाता है उसके अंदर, तो जब लोभ भावना बढ़ जाता है वो जीव दूसरे जीवों को तंग करता है, जब दूसरे पर जीवों को क्लेश देता है तब जीव चिल्लाते हैं, तभी उनमें से एक दूसरा जीव आता है वो भी बड़ा, वो बोलता है हम भी कम आपसे कम नहीं है, हम भी बड़े हैं। आप देखेंगे उसको उसको उसके साथ पर्दा करने वाले और एक व्यक्ति आता है, और इस तरह दो लोग आने के बाद क्या होता है, दोनों अभी देखते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन, तुम बड़े हो हम बड़े हैं, हम दिखा देंगे हम। इस तरह से दोनों दिखाते समय क्या होता है, कभी कभी वर्ल्ड वॉर हो जाता है दो देश के बीच में, क्या रशिया बड़ा है अमेरिका बड़ा है, ऐसे तो भारत बड़ा है पाकिस्तान बड़ा है, हम बड़े हैं तुम बड़े हो। इस तरह करते समय क्या होता है, जो दो व्यक्तियों के बीच में जो अहंकार की ये होता है झगड़ा होता है, हाँ वो कभी कभी देश तक भी हो सकता है। इसे आप देखेंगे एक दूसरे को मारा मारे काटो, मैं तुम काटो ना तुम मुझे काटो, मैं तुम्हारे काम के लिए तुम देखा मेरे काम ठीक नहीं पाओगे, इस तरह से झगड़ा पड़ जाता है। और उस झगड़े में समस्या किसको है, जीवों का। बाकी जीव होते हैं वो कान बंद करके चला जाए, अरे आप लोग झगड़ा मत करो, दोनों अहंकार लोग कहीं और निकल जाओ आप, इधर समाज के बीच में रहकर हम सबको तंग करते हो। तो आप देखेंगे जो जो लोग अहंकार, ये सारे देश को मत लीजिए, आपको परिवार को ही लीजिए। परिवार में आप देख सकते हैं अगर दो लोग अहंकार के वश में आकर झगड़ा करते हैं तो उसके कारण बाकी परिवार के सदस्यों को शांति नहीं मिलता है। आप देखते लोग बोलेंगे अरे तुम अहंकार को छोड़ दो, तुम अहंकारी होकर क्यों अपने बलबूते को दिखाना चाहते हो, अपने अपने क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस को दिखाना चाहते हो। लेकिन लोग समझते नहीं, अहंकार के वश में जब तक जीव है तो कोई बात नहीं मानता। तो इसलिए उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं उस उधर सेल्फिशली वर्किंग टू फुलफिल वन्स ओन डिजायर इज अनलॉफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। दो चीज लिखते हैं प्रभुपाद, अगर कोई जीव स्वार्थ बनता है, देखिए जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा ना करते हुए जीव स्वार्थ बनता है तो क्या होता है, तो उसको अनलॉफुल बोलते हैं। अनलॉफुल मतलब इलीगल, तो क्या है हिंदी में, अन्याय है, अन्याय अनलॉफुल एंड डिस्ट्रक्टिव नाशकारी है, ऐसे बताते हैं। जैसे इसलिए नाश होता है दुनिया में, और वो अन्याय भी अन्याय ना अर्थ समझे मैंने बोला आपको। जब इच्छा हो जाता है एक व्यक्ति के पास, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए है? और वो पैसा सीधा साधा मार्ग में मिलता नहीं, तो क्या करेगा वो अन्याय मार्ग को अपनाएगा, अन्याय मार्ग को अपना कर पैसा हासिल करेगा। तो इस तरह करते समय गोपाल जी बोलते हैं कि नमक जो होता है सब्जी में अगर ज्यादा हो जाता है तो कैसे होता है सब्जी, कोई खाना नहीं चाहता। अगर नमक कम हो गया फिर भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इस तरह आपके पास भी आपको इस जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, सब जीवन के लिए सबको खाने की व्यवस्था चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए। वो मांगने में कुछ गलती नहीं है, भगवान भी प्रदान भी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे गिरिराज महाराज, उन्होंने गिरिराज महाराज ने देखा कि उनकी बहन जो थी अमेरिका में थी, उसका बर्थडे का दिन था, उनके माता पिता ने उनको बोला उनके बहन को, देखो उनके पास 600 कपड़े थे, मालूम है आपको 600 सेट कपड़े थे उनके पास। तो एक बर्थडे के लिए उन्होंने कपड़ा खरीदा नहीं था, उन्होंने माता पिता ने उसको बोला कि तुम्हारे पास कपड़े बढ़ गए बहुत, आज कपड़े नहीं कर देंगे तुम्हारे लिए केक बनाएंगे, केक काटो सब केक खाएंगे। इतना जोर से वो लड़की रोने लगी, इतना जोर से महाराज ने बोला कि उस बहन को देखकर मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो गया, तो मैंने सोचा फुल टाइम ज्वाइन करो इस काम में, ऐसे बोल रहे हो महाराज जी। तो इतने होने के बावजूद भी तो कुछ नहीं थी। ऐसे ही कुछ पाश्चात्य देश में एक एक नेता के बारे में बोला गया कि उनके पास 3000 चप्पल और शूज थे। 3000 होंगे तो दिन में भी एक पहनो, साल में कितना दिन है, 365 डेज, कितने साल लगेगा उनको पहनने के लिए भी चप्पल और शूज पहनने के लिए। लोग इस तरह से लोग भावना जब बढ़ता है लोग इकट्ठा करते हैं, जब इनकम टैक्स रेड होता है तभी पता चलता है आपको क्या क्या उनके पास है, क्या क्या पड़ा है। तो प्रभु नमक का उदाहरण देते हैं, इसलिए नमक जो है जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। अगर हम अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे पास इतना चप्पल नहीं, इतने कपड़े नहीं, हम तो एकदम सरल भक्त हैं, हम पहुंचे भक्त हैं, हम तो अनासक्त भक्त हैं, आप सोचेंगे ऐसे। इसलिए प्रभु जी बताते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोभी है कि नहीं, ये उतना कठिन नहीं है समझने के लिए। जैसे एक हिंजवाड़ी में काम करता था, जैसे 12 घंटा काम करता था, कंपनी वाले ने बोला कि देखो तुमको 30,000 दे रहे हैं अभी, और 2 घंटा ऐड कर दो हम 40 दे देंगे आपको। तो अभी 14 घंटा किया काम, लेकिन घर वाले चिल्लाने लगे, अरे 14 घंटा काम करोगे? तो सुबह सुबह जाता था 8 बजे पहुंचता था कंपनी, रात को कितने बजे वापस? 10 बजे वापस घर में। लोग बोले कि अरे तुम्हारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता, बीवी को टाइम नहीं मिलता, कहते तो नहीं थे। सुबह इतने जल्दी निकल जाते हो, रात को लेट आते हो, वो नहीं अभी कमा रहे हैं, अभी कमाने का वायसा भी हम कमाएंगे, बाकी कुछ करने के लिए टाइम नहीं। लेकिन ऐसे करते 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 क्या हो गया, उसको 6 महीना काम किया तो उसको स्टिफ नेक हो गया, स्ट्रेस हो गया, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे काम करता करता जाएगा कोई भी तो स्टिफ नेक होता है, बैक पेन होता है। तो ये नहीं कर पाई, देखना देखना पड़ा, तो ऐसे स्टिफ हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला देखो तुमको 3 महीना छुट्टी लेना पड़ेगा तुमको, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो खेल लगाना पड़ेगा। वो कंपनी वालों को पूछा, वो बोले 3 दिन देंगे आपको, बाय 3 महीना नहीं दे पाए। तो वो सोचा कि आयुर्वेदिक लोग बहुत टाइम मांगते हैं, टाइम दे नहीं पाते, एलोपैथी इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 15,000 रुपया महीने में एक बार लगाना पड़ेगा उनको, मोटा इंजेक्शन। अभी उसको मिल रहा है कितना, 40,000, खर्चा कर रहा है कितना, 15,000 इंजेक्शन के लिए। अभी महीने में उनको कितना बच रहा है, 36 मिल रहा है। पहले कितना मिलता था, 30 मिलता था, 2 घंटा कम भी काम करना फिर भी 30 मिलता था। अभी 2 घंटा भी ज्यादा करना और 15,000 भी खर्चा और पहले से कम पैसा मिल रहा है उसको, ये बुद्धू नहीं है, ये बुद्धिमान है, बुद्धू है, करेक्ट है ना? आप देखेंगे प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे तकदीर में जितना लिखा है उससे तुम ज्यादा कमाने के लिए कसरत करोगे तो पैसा आएगा। लेकिन लॉयर लोग, डॉक्टर लोग, ऐसे इनकम टैक्स लोग सब खींच लेंगे। कंपनी में तो TDS करके रखा है उन्होंने, मालूम है आपको, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ओनली, TDS का मतलब क्या है, आपके हाथ में पैसा आने के पहले वो लोग काट लेते हैं, पता नहीं कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है अराउंड 10-20% होता है, 30% होता है, बोलते 30%। हाँ, अगर आपका सैलरी बढ़ता है तो TDS भी बढ़ता है। और उसको किधर काटते हैं, पहले से काट कर ही आपको देते हैं बाकी। कभी देखिए, कभी 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 हम लोगों को बोलते हैं कि देखो भगवान को भी थोड़ा सेवा के लिए देना चाहिए। लोग बोलते हैं हम सोच कर बताएंगे, क्योंकि भगवान को देते समय एक व्यक्ति आया था, मोटा कार में आया था, बड़ा कार, और उसका शरीर भी बड़ा मोटा था, बड़ा करोड़पति था। अंदर आया इधर पुंजीबाहरी मंदिर में, पीछे से पर्स निकाला और एक कॉइन अंदर डाला और बाकी उसको अंदर रख ले आए। तो भगवान को देते समय लोग बहुत सोचते हैं कितना देना है, 1 रुपया देना है, 2 रुपया देना है। लेकिन कंपनी में कमाते समय वो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, पूछे बिना काट लेंगे पहले से। इसलिए वो क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और भगवान को देना क्या है, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। वो TDS हम अगर हम देंगे तो हमारे अंदर लोभ कम होगा, जितना हम भगवान को देते हैं उतना लोभ कम होता है। एक पति पत्नी बता रहे थे कि एक बार बोनस मिल गया उनको दिवाली के समय, कंपनी ने उनको 10,000 दे दिया बोनस, और घर वापस घर पैसा लेके आया पति, घर में बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध मच गया। इसलिए ये 10,000 लेकर क्या करने का, इसको पत्नी बोल रही थी शादी कर देने का, बच्चे बोल रहे हैं हमको स्मार्टफोन चाहिए, पिताजी बोल रहे हैं हमें कुछ कर्जा चुकाना है, इतना झगड़ा मच गया है। तो वो पति ने बोला हम भगवान को दे देंगे इसको। देखिए ऐसा एक सही कहानी हमने सुना, पंडरपुर में मैं गया था, एक मंदिर के 2-3 किलोमीटर दूर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, एकदम संगमरमर से बनाया हुआ बिल्डिंग। उधर हमारे ब्रह्मचारी लोग उधर कुछ सेंटर बनाए हैं युवकों के प्रचार के लिए। मैंने बोला अरे आप लोग इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, खर्चा बहुत हुआ होगा, कैसे आपने कलेक्शन किया, कैसे बनाया है सब चीज़? वो बोले प्रभु जी इसके पीछे बड़ा कहानी है। बोला उन्होंने क्या है, पूछा मैंने। वो बोले कि एक परिवार था, एक वैश्य परिवार, उनके 4 बेटे थे, तो पिताजी बुढ़े होने के बाद वो प्रॉपर्टी डिवीजन किया उन्होंने। ऐसे डिवीजन करते समय पंडरपुर में उनके पास जमीन था, ऐसे एक बहुत बड़ा मकान बांध रहे थे वो उधर, वो भी 4-5 माले वाला मकान बांध रहे थे। तो प्रॉपर्टी डिवीजन के समय उस प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा स्पर्धा हुआ, उसको छोड़कर अलग अलग महाराष्ट्र के कोने कोने में उनके बड़ा प्रॉपर्टीज है, सब बच्चों को करोड़ों करोड़ों रुपया में बंटवारा किया गया, करोड़ों रुपया। फिर भी वो बिल्डिंग के लिए बड़ा युद्ध मच गया उनके घर में। तो उसके बाद
वो तो परमपति लोकनाथ स्वामी से जुड़े हुए थे वो। तो एक दिन के मन में आइडिया आया कि घर में शांति नहीं है, पति पत्नी और एक्चुअली चार बेटे लोग आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं और अपने अपने पत्नी के साथ भी झगड़ा है, क्योंकि पत्नी बोल रही है तुम ले लो, है सब पत्नियां बोल रही है तुम क्या करेंगे वो है। एक दिन पिताजी ने एक आइडिया निकाला, उन्होंने बोला कि मैं परमपति लोकनाथ स्वामी से बात किया, हम अगर इस्कान को इसको गिफ्ट में दे देंगे हम तो हमें शांति प्राप्त होगी, आप लोगों को क्या सोचना है। चारों के चार बेटे मान लिया, ये अच्छा आइडिया है, अगर हमको भी नहीं मिला नो प्रॉब्लम, उसको नहीं मिलना चाहिए ऐसे है, कम से कम भगवान को मिलता है बहुत अच्छा है। तो महाराज ने वह उनको बोला, उनके परिवार को बोल दिया, कीर्तन किया महाराज ने, अच्छा कीर्तन बोल दिया कि चिंता मत करो, भगवान की सेवा में लगाएंगे, सब खुश है। तो क्यों बोला, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने से लोभ निकल जाता है हमारे हृदय से, तो इस तरह नमक जैसे जितना चाहिए, ये बोलते हैं ना ईशा वास्तम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रद कस्य सिद्धनम। देखिए जितना आपका कोटा है उतना ही लेना चाहिए। जैसे कभी कभी आप कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम करते हो तो आंख में जलन होता है, पेट में पाचन नहीं होता है। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेंगे देखो तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम ज्यादा टाइम कंप्यूटर में बैठते हो। इसलिए वो बोलेंगे कि अतिवृष्टि अनावृष्टि आपने देखा होगा, अतिवृष्टि भी अच्छा नहीं, अतिवृष्टि से नुकसान होता है खेती में, अगर अनावृष्टि होगा तो खेती बढ़ ही नहीं सकता। इस तरह हम भी हरेक इंद्रिय का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे आंखों का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए, इस तरह हरेक का हरेक चीज का। तो आजकल आप देखते हैं लोग घर में बैठ कर भी टपटपटपट कंप्यूटर में रहते हैं, तो घर में आने के बाद कार में जाते हैं, घर के अंदर भी एयर कंडीशन, कार के अंदर भी एयर कंडीशन उसमें बैठते हैं। इसे तो कंपनी में जाने के बाद ऊपर जाना तो वो भी लिफ्ट है, लिफ्ट में जाते हैं तो हाथ पैर का कुछ काम ही नहीं है, हमेशा बैठे 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 क्या हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है। और साथ साथ खाते भी हैं फास्ट फूड करके खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, अलग अलग चीज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो शरीर मोटा हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं अरे तो तुम चलते नहीं, फिरते नहीं, कुछ काम धंधा करते नहीं। उन दिनों में लोग पानी निकाल देते हैं, ये इससे है हाँ कुआं से निकालना पड़ता था, उनको माताएं ये कर देती है मालूम है आपको, हाँ चक्की चक्की बोलते हैं, हाँ चक्की से पीसती थी, आजकल सबके लिए मशीन आ गया है इसलिए कुछ एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए लोग ऐसे वेजिटेबल बन जाते हैं, ऐसे चलते हैं देखा आपने तो मोटे हो जाते हैं, बैरल जैसे दिखते हैं ऐसे, करेक्ट है। तो इसलिए देखिए वैदिक संस्कृत में क्या है, हरेक जो भी सोच कर बनाया है भगवान ने दिया, सबके अच्छा ही अच्छा ही के लिए दिया, लेकिन लोग खाने में लोभी होकर इतना खा लेते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं, उसके कारण व्याधि होता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं ज्यादा भी मत खाओ कम भी मत खाओ, दोनों अच्छा नहीं है, लेकिन कम खाने से कोई मरा नहीं इस दुनिया में। कभी सुना आपने कम खाकर कोई मर गया, ज्यादा खाकर ही लोगों को व्याधि होता है। इधर खास करके खाने के बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी, तो हम लोग जानते हैं कि तो ज्यादा खाने का आदत होता ही है लोगों को, तो थोड़ा ज्यादा खाने के बाद हम सोचते हैं कि आज थोड़ा ज्यादा खा लिया अगले बार हम कम खाएंगे, लोग योजना बनाते हैं लेकिन आइटम के अनुसार मन बदलता है। अगर आइटम एकदम ज्यादा स्वादिष्ट हो तो जिह्वा डिमांड करता है, नहीं तो कभी कभी आइटम उतना बढ़िया भी नहीं हो पेट बहुत खाता है। कुछ कुछ लोग क्यू में आते समय ऐसे भर के ले लेते हैं, उनको डर होता है कि बाद में मिलेगा कि नहीं, खत्म हो जाएगा आइटम, लेकिन खाते समय लगता है कि आधा प्लेट होने के बाद लगता है कि अभी कैसे खा पाऊंगा इसको। तो इंसान को ये बताते हैं, इधर बताते हैं कि ज्यादा खाने से क्या नुकसान है, नींद आता है। खाते हैं हम शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्यों, उस शक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। अगर कोई खाएगा लंच खाएगा एकदम ज्यादा खा लेगा, चक्कर आता है उसको तो सो जाता है। अभी सोने से क्या होता है, अगर खाकर कोई सो जाएगा तो शरीर में ताकत बढ़ जाएगा लेकिन एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया हमने सेवा में, तो इसके कारण जैसे जिह्वा उदर और उपस्थ तीनों एक ही लाइन में है तो वासनाएं बढ़ेगा, उसके बाद इंसान के अंदर तृप्ति नहीं होगा, तो वासना बढ़ने के कारण कामुक कार्यों में लगने के लिए वो प्रयत्न करेगा, उसमें इस तरह तो फंस जाएगा इस दुनिया में उसके कारण। तो ज्यादा का ज्यादा खाकर हम शरीर को अट्टाकटा नहीं बनाना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं शक्ति प्राप्त करके सेवा में लगाने के लिए। हाँ, तो भगवान की सेवा के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति के लिए भोजन चाहिए, इसलिए ये भी एक शरीर भी एक यंत्र है। इस तरह सोचकर व्यक्ति को प्रसाद को बहुत उसको बोलते हैं मिथ्या भूख बोलते हैं। मिथ्या भूख मालूम है आपको? मिथ्या भूख का मतलब है थोड़ा थोड़ा ही खाना, बहुत ज्यादा नहीं खाना। हित भूख का मतलब है ऐसे ही आइटम को खाना जो शरीर को हित करेगा। कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो स्वादिष्ट होते हैं लेकिन पेट के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका में मैदा को व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। व्हाइट पॉइजन का मतलब क्या है? जैसे समोसा वगैरह होता है ना, जो मैदा से बनाया हुआ, तो मैदा अंदर जाकर चिपक जाता है, बाहर निकलता नहीं है। इसलिए इस तरह के आइटम खाते समय ऐसे आवाज आता, बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन अंदर जाकर प्रॉब्लम देगा वो। तो आप देखेंगे व्हीट से बनाया हुआ कुकी होता है, मैदा से बनाया हुआ कुकी होता है, दोनों में क्या आता है? मैदा लोग पसंद करते हैं। इस दुनिया में जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं वो और अच्छा लगते हैं। तो इंसान को पहले तो प्रसाद खाना चाहिए, बाकी सब चीज प्रसाद ना खाने से बंदे जाते हैं। और प्रसाद में भी इंसान को इसलिए खाना चाहिए तंदुरुस्ती के लिए, स्वादिष्ट भी हो लेकिन शक्ति प्रदान करना चाहिए। प्रसाद शक्ति प्रदान करने वाली चीज। तो आजकल इस्लाम के भक्त लोग सीख लिया कि एकादशी के दिन भी 25 आइटम बना सकते हैं लोग। आपको आश्चर्य होगी आज एकादशी के दिन है तो कुछ और दिन है आपको लगेगा इसमें। लेकिन हम लोग खाने का प्रोग्राम बड़ा ना करें, क्योंकि उसको बड़ा करेंगे तो हमारा बंधन भी बड़ा हो जाएगा उससे। तो खाने में सरलता चाहिए उसमें। तो शुरुआत में प्रभा जी बोलते थे कि भक्तों को बोलते थे गुलाब जामुन खाओ और एक खाओ और दो खाओ, देते रहते थे प्रभा जी। प्रभा जी बोलते थे कि ईट लाइक अ डक, डक जो खाकर ऐसे बैठा रहता है, तुम खाओ नो प्रॉब्लम। लेकिन 4-5 साल होने के बाद प्रभा जी ने बोला देखो तुमको नियंत्रण लाना चाहिए। तो एक भक्त ने पूछा प्रभा जी को, समझ आपने ही बोला और खाओ करके। प्रभा ने बोला पहले मैंने बोला और खाओ इसलिए तुमने कहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ मत खाओ है ना। थोड़ा वरिष्ठ भक्तों के लिए क्या है उपदेश क्या है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए। शुरुआत में ठीक है, कोई नया नया आया है वो ज्यादा खाता है सब आइटम, वक्त ये चाहिए वो चाहिए आइटम, तो उसका पूरा मन खाने के ऊपर है, क्योंकि अन्नमय कोशी पाला है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। तो हम लोग 3-4 साल हो गया भक्ति में, तो हम देखना चाहिए कि अगर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो मन शांत नहीं होगा। स्वादिष्ट व्यंजन खाने से मन विचलित होगा और शरीर में शरीर हमको साथ नहीं देगा भक्ति करने के लिए। जैसे मैंने बोला काम वासना बढ़ेगा और शरीर सो जाएगा, सेवा नहीं करेगा, आलसीपन बढ़ जाएगा। और जैसे मिर्ची वगैरह खाते हैं हम, क्रोध भी बढ़ता है उन चीज़ों से, इस तरह रजोगुण तमोगुण बढ़ता है इस तरह के खाने से। आप बोलेंगे भाई जी ये तो प्रसाद है, प्रसाद है, लेकिन हम प्रसाद करके सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि जैसे कुछ कुछ मंदिरों में ऐसे एक नियम है, जो माताएं राजभोग बनाती हैं उस दिन का राजभोग वो खा नहीं सकती, ऐसे कुछ मंदिरों में नियम है। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि बनाते समय उनके जीवा से सलेवा निकलेगा है, या एक आइटम बनाती है आज में पूरण पोली बना रहे हैं भगवान के लिए, भोग ऑफर करके आ जाएगा हम खाएंगे, ऐसे योजना बनाएंगे वो। इसलिए उनको पता है कि पूरण पोली बनाओ लेकिन तुम नहीं खाओगी, भगवान खाएंगे। तब मान लेते हैं ठीक है हमको तो मिलने वाला नहीं है, तो अच्छी तरह बनाएंगे भगवान को बना कर दे देंगे, ठीक है भगवान तुम खाओ हमको नहीं चाहिए। तो ये सब क्यों बना, नियम क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोग इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति ही मूल कारण है दुनिया में सब तरह के दुखों का। तो प्रभु जी बताते हैं इस तरह से जीव दुनिया में भगवान से बहिर्मुख होकर इंद्र तृप्ति के पीछे भागता है, तो भगवान ने आयोजन जो बनाए हैं उस आयोजन को भूल गया। सब जीव साथ में जुड़ना चाहिए। एक लास्ट छोटा उदाहरण देकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। ये एक जो अगर बड़ा मशीन है उसमें एक स्क्रू है, अगर वो स्क्रू मशीन लाते समय स्क्रू नीचे गिर गया सड़क में कहीं, तो क्या वो स्क्रू कुछ काम का आएगा? वो स्क्रू का कुछ मूल्य होगा? अगर वो सड़क में पड़ा हुआ एक स्क्रू को लेकर आप मार्केट में बेचो कितना मिलेगा आपको? एक दुकान होता है ना उसके लिए बेचते हैं, कितना देंगे? हो सकता है 50 पैसा 1 रुपये देंगे आपको। लेकिन अगर वो ही स्क्रू आपको कंप्यूटर में कहीं तो अंदर लगने वाला है वो स्क्रू अगर नीचे गिर गया, आप मशीन लाने के बाद देखते हैं कि उसमें स्क्रू नहीं है, तो स्क्रू के बिना मशीन ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अगर वो स्क्रू खरीदना हो तो दुकान में जाकर मांगो कितना होगा, 10-20 रुपया होगा वो स्क्रू, क्योंकि जब वो स्क्रू मशीन के साथ जुड़कर रहता है तभी उसका मूल्य बढ़ता है, लेकिन अलग होकर जमीन में पड़े रहता है उसका मूल्य कुछ नहीं होता है। इसलिए जीव भगवान से, भगवान की इस्कान संस्था में जुड़कर जब काम करता है तब उसको मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो भगवान और हरि गुरु वैष्णव से न जुड़कर अकेले होकर सोचता है कि मैं खुद मेरा बड़ापन दिखाऊंगा, वो आसार हो जाता है, उसका कुछ मूल्य नहीं रहता उसका। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन ज्यादातर जीव जो दिखाना चाहते हैं वो अलग होकर सारे दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बड़ापन दिखाना चाहते हैं। ये दुनिया में बड़ा समस्या है, कटरोट कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का मूल कारण वही है। जीव अपने आप को भगवान बनाना चाहता है, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। केंद्र बिंदु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो मेरे गुरु महाराज एक बार एक प्रश्न दे रहे थे, उन्होंने बताया अगर आप लीडर भी हो हमको क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मैं पेड़ में एक पत्ता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए, नहीं तो मैं एक फूल हूँ, नहीं तो मैं एक फल हूँ, ऐसा नहीं सोचे कि मैं पेड़ में एक मूल हूँ। मैं अगर कोई सोचेगा मैं पेड़ का मूल हूँ तो उसका गर्व बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि मूल कौन है? यथातरोर मूल निषेचने नृप्यंतभुज उपशाखा प्राणोपहारा चैतेन्द्रियाणम तथा सर्वारहणम अच्युत इज्या बोला गया। तो पेड़ के मूल कौन है? भगवान अच्युत है, हम मूल नहीं है, हम एक पत्ते हैं। तो हर एक जीव को ये सोचना चाहिए कि मैं इस दुनिया के केंद्र बिंदु नहीं हूँ, भगवान केंद्र बिंदु है, तो मैं भी सब जीवों के साथ सहयोग करते हुए भगवान की सेवा करूँ। ये सब मान लेता है तभी उसके अंदर लोभ भावना निकल जाएगा। तो लोभ जो करते हैं वो लोग खुद भी दुख भोगते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। लोभ के कारण मैं लोभ के बारे में अनेक छोटे छोटे कहानियां हैं, मैंने नहीं बोला क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आप लोग जानते हो कि लोभ जो है वो काम से चालू होता है। काम की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध बनता है, काम की पूर्ति होता है तभी वो लोभ बनता है। किसी व्यक्ति के पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, बाइक है उसको कार चाहिए, किसी को मारुति कार है उसको सेंटर कार चाहिए, सेंटर कार है मर्सिडीज बेंज चाहिए, किसी पास मर्सिडीज बेंज है उसको फॉरेन कार चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, लंबोर्गिनी है, ऐसे बड़ा कार चाहिए, 3 लाख का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का गाड़ी चाहिए। अगर वो भी है उसको चार्टर्ड प्लेन चाहिए उसको खुद ही जाने के लिए। इसी तरह आप देखेंगे किसी के पास 1 BHK है, 2 BHK है, रो हाउस है, बंगलो है, उसके बाद कुछ लोग हैं जिनके पास 50 कमरा का, 80 कमरा का भी रूम प्रभा जी बोलते हैं ये घर था। अगर आपका 80 कमरा है, हर एक कमरे में रहने वाले आप, अगर आपका आपके पास 50 करोड़ भी पैसा मिल जाए, 5 चपाती के बदल के आप 50 चपाती खाएंगे आप, क्या आपके पास शक्ति है? इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना तो उतना ही है, रहना तो उतना ही है, लेकिन हम दूसरे जीवन को दिखाने के लिए जब इंसान इकट्ठा करता है दुनिया में चीजों को, उसके कारण बाकी जीव गरीबी में तड़पते हैं। लेकिन भगवान के आयोजन इतना सुंदर है सब जीवों के लिए, तो भगवान ने सब बच्चों को जैसे माँ बाप देते हैं खिलौना देते हैं, भगवान सबके लिए आयोजन किया है। तो इस्कॉन संस्था, प्रभुपाद ने बोला कि ये इस्कॉन संस्था सिखाता है सब जीवों को कि परम पिता कृष्ण अहम बीज प्रद पिता जो है उनको मानकर, उनको केंद्र बिंदु बनाकर, उनके इच्छा अनुसार हम थोड़ा बहुत जो हमारी जरूरत है उतना ही हासिल करते हैं, उससे उसमें खुश रहते हैं और भक्ति में जुड़ जाते हैं, हमारे सब शक्तियों को, हमारे सब अवयवों को, अंगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेश सेवन, तो तृप्ति प्राप्त होगा हरे कृष्ण जप के द्वारा, हरे कृष्ण जप और आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से तब लोभ निकल जाएगा वो। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में सही ढंग से नहीं जुड़े हैं तो लोभी होकर दुनिया में खुद भी तड़पते हैं, दूसरे जीवों को भी सताते हैं। तो हम भक्ति मार्ग में आकर हम लोग गंभीर बनकर इस तरह की भावना से हम ऊपर उठेगी। हम भक्ति मार्ग में रहते समय हम भक्त होने के बावजूद भी हम तमोगुणी रजोगुणी भक्ति में जुड़कर हम लोभी भी बन सकते हैं, हो सकता है, ये असंभव नहीं है। जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं जी ये डिपार्टमेंट उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी कर सकता हूँ ना, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तब ये गाड़ी उसको क्यों दिया है, हमारे डिपार्टमेंट को देना था, ऐसे कुछ लोग करते हैं। कुछ कुछ लोग
आपस में स्पर्धा करते हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद भी। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद भी शुद्धिकरण बहुत कुछ करना होता है। ये काम क्रोध लोभ ये तीन बहुत बड़े दुश्मन है भक्त के लिए, तो इन तीनों से ऊपर उठने के लिए नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चित्त को शुद्ध करके काम क्रोध लोभ इत्यादि को हटाकर निकाल कर हम परमा आनंद को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस तरह एक एक श्लोक में प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण विषयों को सिखा रहे हैं। आज के दिन प्रभुपाद जी लोभ के बारे में सिखाते हैं, ये भौतिक लोभ को त्यागो और आध्यात्मिक लौल्य को अपनाओ। आध्यात्मिक जीवन में हरि कथा और साधु संघ के लिए लोभ हो सकता है, वो लोभ अच्छा है, और कथा श्रवण करना चाहते हैं, और कीर्तन करना चाहते हैं, और प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहते हैं, और सेवा करना चाहते हैं, और हम दान देना चाहते हैं, ये सब इस तरह का आध्यात्मिक लोग, दिस इज वेलकम, ये बहुत अच्छा है। प्रभुपाद की।